वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दसम स्कंद अध्याय 38 वृंदावन में अक्रूर का आगमन। तो इसके पहले हमने सुना भगवान ने केसी का वध किया और व्योमासुर का वध किया और इसके पहले की जो रात थी उसमें कंस ने अक्रूर से प्रार्थना की, बहुत खुशामद किया अक्रूर से और आग्रह किया कि कृष्ण और बलराम को मथुरा किसी प्रकार से ले आओ और कृष्ण बलराम को हर प्रकार के उपाय से धोखा धड़ी के द्वारा मरवा डालना चाहता था। तो उसने कहा, अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि महामति अक्रूर ने वह रात मथुरा में बिताई और तब अपने रथ पर सवार होकर नंद महाराज के ग्राम के लिए रवाना हुए। नंद ग्राम या नंद गोकुल। अक्रूरो बिचताम रात्रिम मधुपुर्याम महामति रथमास्थायें प्रयो नंद गोकुलम। तात्पर्य में लिखा है, कंस ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अक्रूर को वृंदावन जाने का आदेश दिया। अक्रूर मथुरा में रात बिताकर अगले दिन तड़के ही रवाना हो गए। अगले दिन मतलब द्वादशी के दिन रवाना हो गए। उसी दिन प्रातः नारद ने वृंदावन में कृष्ण की स्तुति की और दोपहर के बाद वहां व्योमासुर मारा गया। अक्रूर गोधोली बेला में भगवान के ग्राम में प्रविष्ट हुए। तो अक्रूर जी शाम को पहुंचे, है ना, व्योमासुर को भगवान ने जिस दिन मारा उस दिन, और केसी का भी वध भगवान ने किया है, है ना, या तो इसी दिन या एक दिन पहले केसी का वध किया है। अब अक्रूर जी जा रहे हैं मथुरा से वृंदावन और भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव कर रहे हैं। अक्रूर महात्मा है, अक्रूर जो है ना वो दुरात्मा नहीं है, जैसे कंस दुरात्मा है और दुरात्मा असुर वृंदावन गए, है ना। अक्रूर यद्यपि कंस के द्वारा भेजे हुए जा रहे हैं मथुरा से वृंदावन और कंस के द्वारा भेजे हुए बहुत से असुर गए, लेकिन ये पहली घटना है कि कंस का भेजा हुआ आदमी एक महात्मा है जो कि जा रहा है, है ना। कंस महात्मा नहीं है और न कंस के भेजे हुए अभी तक जितने भी लोग गए वो महात्मा थे, लेकिन अक्रूर महात्मा थे और भगवान कमल नेत्र के प्रति अपार भक्ति का अनुभव कर रहे हैं और सोच रहे हैं। गच्छन् पथि महाभागो भगवत्यं मुझे क्षणे भक्तिम पराम उपेगत एवमेतन न चिंतयन। अब बहुत विस्तार से अक्रूर जी के विचारों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, क्योंकि एक महात्मा कैसे विचार करता है। महात्मा के विचार, महात्मा नस्त माम पार्थ देवीं प्रकृति मांसुता भजन देना न मनसो यात्मा भूत आदिम अभ्यम, है ना। तो भगवान को सबका आदि कारण मान करके भजन अनन्य भाव से भजन करता है। तो अक्रूर महात्मा है तो अनन्य भाव से कृष्ण का भजन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तो क्या सोच रहे हैं, मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं, मैंने कौन से ऐसे शुभ कर्म किए हैं, या कौन सी ऐसी कठिन तपस्या की है, या कौन सी पूजा की है, या ऐसा कौन सा दान दिया है जिससे आज मैं भगवान केशव का दर्शन करूंगा। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्ष्याम यज्ञ केशवम। अब अपनी योग्यता नहीं मान रहे हैं अक्रूर जी, ये है भक्त का स्वभाव, अपनी योग्यता नहीं मानता है कि मैं भगवान का दर्शन करने योग्य हूँ। क्यों? मैं विषय भोगों में लीन रहने वाला भौतिकतावादी व्यक्ति हूँ, अतः अपने लिए भगवान का दर्शन करने का ये अवसर प्राप्त कर पाना मैं उसी प्रकार कठिन समझता हूँ जैसे शूद्र के लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण करना कठिन है। शूद्र वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। ममेतन दुर्लभम मन उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। किंतु नहीं, छोड़ो इन विचारों को, आखिर मुझ जैसे पतित को भी अच्युत भगवान को देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। पहले तो कहा कि मैं तो योग्य नहीं हूँ भगवान का दर्शन करने का, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं अवसर मिल सकता है मुझको भी, क्योंकि काल रूपी नदी के प्रवाह में बह रहे बद्ध आत्माओं में से कोई एक आत्मा तो कभी कभी किनारे पर पहुंच ही जाती है, चाहे दुर्लभ क्यों ना हो कोई कोई तो पहुंच जाती है ना। मेवम मम धमर्ष्यापि स्यादेवाच्युत दर्शन प्रियमाण काल नद्या क्वचिन्तरति कश्चन। आज मेरे समस्त पाप कर्मों का उन्मूलन हो चुका है। उन्मूलन मतलब समाप्त, मूल का मतलब जड़ और उन का मतलब ऊपर, जड़ ऊपर आ गई, अगर जड़ ऊपर आ गई तो मतलब समाप्त है ना। मेरे पापों की जड़ आज ऊपर आ गई, किसी पेड़ की जड़ अगर ऊपर आ जाए उखाड़ ली जाए तो वो समाप्त हो गया पेड़ है ना। तो आज मेरे पाप कर्मों का उन्मूलन हो चुका है और मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि मैं भगवान के उन चरण कमलों को नमस्कार करूंगा जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं। ममाद्या मंगलम नस्कम फलवान चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगि धेयांग्रि पंकजम्। तो यह है गीता में भगवान ने कहा है महात्मा के लक्षण क्या है, संक्षेप में कहा कि मेरा कैसे अनन्य भाव से भजन करते हैं, और यहाँ पर विस्तार से वही, क्योंकि भागवत क्या है गीता का ही विस्तार है। अब क्या कहते हैं अक्रूर जी, निस्संदेह आज कंस ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी है। कंस ने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, मुझे उन भगवान हरि के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए भेजा है, ये कंस की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। जिन्होंने अब इस संसार में अवतार लिया है, प्राचीन काल में उनके चरण नखों के तेज से ही इस भौतिक संसार के अंधकार को पार करके अनेक लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है। इस संसार का अंधकार कैसे दूर होता है, उनके चरण कमलों के नाखून के प्रकाश से ही इस संसार का अंधकार दूर होता है, और भव सागर को पार किया है लोगों ने। कंसो बता दिया कृत में इति अनुग्रह द्रक्षेन्द्रिपन मम प्रहितो मुना हरे कृतावतारस्य दुरत्ययम् तमाम पूर्वे तरण्यं नखमण्डल तिसाम। तात्पर्य में लिखा है अक्रूर ने देखा कि कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि ईर्ष्यालु कंस ने उन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए भेजकर उन पर इतनी बड़ी कृपा करी है। अब अक्रूर जी क्या सोच रहे हैं, उन्हीं चरण कमलों की ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, जिन चरणों का मैं दर्शन करूंगा उन्हीं चरण कमलों की ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, शिव जी पूजा करते हैं, अन्य सारे देवता पूजा करते हैं, और लक्ष्मी जी भी सब देवता जिन लक्ष्मी जी की कृपा याचना करते हैं वो लक्ष्मी जी भी क्या करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, और जितने वैष्णव हैं वो भी उनकी पूजा करते हैं। उन्हीं चरण कमलों से भगवान अपने बालकों सहित अपने बालक मित्रों के साथ गौ में चराते समय जंगल में विचरण करते रहते हैं। वे ही करण गोपियों के सन्मुख पर लगे कुमकुम से सने रहते हैं। गोपियां उनके चरणों को अपने स्तनों में रखती हैं, तो स्तनों में जो कुमकुम लगा है उनके चरणों में लग जाता है, और कृष्ण के जो चरण हैं वो जब चलते हैं जमीन में तो कुमकुम लगा है जमीन में। यदर्चितम ब्रह्म भवादिभि सुरेण श्रिया च देव्या मुने भी सशाश्वत गोचारणायानुचर चरन्वने यन गोपिकानां कुछ कुंकुमांकितम अवश्य ही मैं भगवान मुकुंद के मुख को देखूंगा, क्योंकि अब हरिण मेरी ओर दाएं ओर से मेरी दाएं ओर से निकल रहे हैं। देखा अकुर जी रास्ते में ये विचार कर रहे हैं लक्षणों पर कि हरण मेरी दाहिनी ओर से निकल रहे हैं, इसका मतलब जरूर भगवान के मुख कमल को देखूंगा। और भगवान का मुख कैसा है, घुंघराले बालों से घिरा है और उनके गाल आकर्षक हैं और नाक और उनकी हंसी पूर्ण चितवन और लाल कमल जैसी आंखें अत्यंत सुंदर हैं। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकाभृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। आगे अकुर जी कहते हैं, मुझे भगवान विष्णु के दर्शन होंगे तो समस्त सौंदर्य के भंडार हैं भगवान, जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य जैसा स्वरूप धारण किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरी आंखों को अब इस जीवन का फल प्राप्त होने वाला है। जो आंखें आंखों का जो असली लाभ है वो आज मुझे जरूर मिलने वाला है। अप्यन्य विष्णु और मनुजत्वमी भारावताराय भवो निजे क्षय लावण्य धामनो भवितोपलम्भनम मह्यम नास्यान् फल मंजसादृशः। तो वे भगवान साक्षी हैं, जितने भी संसार के कर्म हैं उनके साक्षी हैं। फिर भी वे अपने को सदैव पृथक रखते हैं इस संसार से। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा भ्रम के अंधकार को दूर रखते हैं। जब वे अपनी भौतिक प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं तो इस जगत के जीव प्रकट होते हैं, और ये जीव उन्हें अपनी प्राणवायु इंद्रियों और बुद्धि के कार्यों में अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। ये ईक्षिता हम बहितो के सत्सतो सुतेजता पास तमोभिदा भ्रम स्वमायात्मन रचित सदीक्षया प्राणाक्ष देवी सदने सुधीयते। तात्पर्य में लिखा है, इस श्लोक में अक्रूर ने भगवान के सर्वशक्तिमान पद की स्थापना की है, जिन भगवान का दर्शन करने वे वृंदावन जा रहे हैं। अभी के शब्द ध्यान द्वारा भगवान की उपस्थिति की अनुभूति की विधि का सूचक है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में भी इस विधि का वर्णन हुआ है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि दृश्यैर् बुद्ध्यादिभिर् दृष्टा लक्षणैरनुमापके। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के साथ साथ प्रत्येक जीव में रहते हैं, और इस तथ्य की अनुभूति और कल्पना हमारे देखने और बुद्धि से सहायता लेने की क्रियाओं से होती है। आगे अकुर जी कह रहे हैं कि भगवान के गुण कर्म और अवतारों से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और समस्त सौभाग्य उदय होता है, और हर व्यक्ति शुद्ध हो जाता है भगवान के गुणगान से। और दूसरी ओर अगर ऐसी वाणी जिसमें भगवान का गुणगान नहीं होता है तो वो क्या है, सबको सजावट करने जैसी होती है, बेकार है। मुर्दे को अगर सजाया जाए तो वो सजावट बेकार है, क्योंकि वो मुर्दा है। उसी प्रकार से ऐसी वाणी चाहे कितनी सुंदर क्यों ना हो, ये भगवान के गुणगान नहीं है तो क्या है, वो बेकार है। बहुत अलंकार हैं, भाषा के अलंकार हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार है ना, ये सब बेकार है अगर भगवान का गुणगान नहीं है तो। यस्याखिलामी वाभि सुमंगलं वाचो विमिता गुण कर्म जन्म भी प्राणंति सुम्भन्ति पुनन्ति वै जगन् या संदिरक्ता सव शोभना मता। यही भगवान सात्वत वंश में प्रमुख देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अवतरित हुए हैं, जो उनके द्वारा निर्मित धर्म के नियमों को धारण करने वाले हैं। वे वृंदावन में रहते हुए अपने यश का विस्तार करते हैं, जिनकी महिमा देवता गण भी करते हैं, और जो सबों को मंगल प्रदान करने वाले हैं। सचावतीर्ण किल सात्वतान्वये ससेतु पाला मरे वर्य शर्म कृह यशो वे तन्वन व्रज आस ईश्वर गायन्ति देवा यद शेष मंगलम। अब अक्रूर जी क्या कहते हैं, आज मैं उन्हें देखूंगा जो कि महात्माओं के लक्ष्य हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं महात्माओं के। सभी नेत्र वालों को उनके दर्शन से हर्ष होता है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के असली सौंदर्य हैं। निस्संदेह उनका रूप लक्ष्मी द्वारा अभिप्सित आश्रय है। लक्ष्मी जी जिनका आश्रय लेती हैं ना, अब मेरे जीवन के समस्त शुभ बन चुके हैं। मेरे जीवन के जितने शुभ हैं वो आज उदित हो गए हैं। तम त्वन्द नूनम महताम गतिम गुरुम त्रैलोक्य कांतम दृश्य मनमोत्सवम रूपम दधानम प्रिय एप्सितास्पदम द्रक्षे ममासन्नुतता सुदर्शनम। अब अक्रूर जी क्या सोचते हैं, जब मैं भगवान का दर्शन करूंगा तो क्या करूंगा? पहले से विचार करना चाहिए ना, कि आप जिससे मिलने जा रहे हो तो कैसे बात करोगे, कैसे मिलोगे, है कि नहीं, कैसे उठोगे, कैसे बैठोगे, पहले से सोचते हो है ना। उसी प्रकार से तो अक्रूर जी विचार कर रहे हैं कि भगवान के जब मैं दर्शन करूंगा तो क्या करूंगा, रथ से नीचे उतर आऊंगा। जब भगवान के दर्शन करूंगा तो रथ से नीचे उतर आऊंगा और कृष्ण और बलराम दोनों भगवानों के चरण कमलों को नमस्कार करूंगा। उनके पैर वही हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील बड़े बड़े योगी अपने मन के भीतर धारण करते हैं। मैं दोनों के बाल मित्रों और वृंदावन के सब वासियों को भी अपना नमस्कार निवेदन करूंगा। अथावरूढ़ा सपदी सयोरथान प्रधान पुंसो चरणम तुलम दये धिया धृतम योगी विरप्य हम ध्रुवम नमस्य आभ्याम च सखीन बनो कस। और जब मैं उनके चरणों पर गिर पड़ूंगा तो भगवान क्या करेंगे वो भी सोच रहे हैं। और भगवान जो है अपने भक्तों के संकल्प को पूरा करते हैं। इस भौतिक संसार में आप जिससे आशा करते हो वैसा वो आपकी आशा पूरी नहीं करता, है कि नहीं। आप सोचते हो कि मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा, उसके गले मिलूंगा, ये मैं करूंगा तो वो मुझे ऐसे कहेगा वैसे कहेगा, लेकिन फिर नहीं होता वैसा। जब भगवान के बारे में सोच रहे हैं भक्ति से तो भगवान जो है उनके संकल्प को पूरा करेंगे। तो वो क्या विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जब मैं उनके चरणों पर गिर पड़ूंगा तो सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे सिर पर अपना कर कमल रख देंगे। जो लोग काल रूपी शक्तिशाली सर्व से अत्यंत डर कर उनके शरण में जाते हैं, ये हाथ उनके सारे भय को दूर कर देता है। भगवान का ऐसा हाथ है। अप्यंग्रि मूले पतितस्य मे विभु शिरस्य धास्यं निजहस्ते पंकजं दत्ताभयं काले भुजंगरंधतां उद्वेगितानां शरणेशिनां नृणां। अब भगवान के उस हस्त कमल की क्या विशेषता है? भगवान का वो कर कमल कैसा है? उस कर कमल को दान देकर पुरंदर यानी इंद्र और बलि ने स्वर्ग के राजा इंद्र के पद को प्राप्त किया। और रास नृत्य की आनंद लीलाओं के समय जब भगवान ने गोपियों के पसीनों को पोंछकर उनकी थकान दूर की तो उनके मुख स्पर्श ने उस हाथ को मधुर फूल की तरह सुगंधित बना दिया। भगवान का ऐसा हाथ है, एक तो भगवान के हाथ के इस आशीर्वाद से महाराज बलि को इंद्र का पद प्राप्त हुआ और जो पुरंदर जिनका इंद्र पद छिन गया था उनको इंद्र का पद प्राप्त हुआ। और उनके हाथ ने जो है गोपियों के मुख को पोछा, पसीना पोछा, तो उनका हाथ सुगंधित हो गया गोपियों के मुख के कारण। तो ऐसा भगवान का हाथ है। समरहणम यत्र निधाय कौशिकं तथा बलि चापे जगत्रयेन्द्रताम यद्वा विहारे व्रजयोषिताम श्रमम स्पर्शेन सौगंध के गंध पानुदन। तात्पर्य में लिखा है कि मान सरोवर में पाए जाने वाले कमल को पुराणों में सौगंध कहा गया है। भगवान कृष्ण के कमल जैसे हाथ ने गोपियों के सुंदर मुखड़ों का स्पर्श करने से इसी फूल की सुगंधि प्राप्त कर ली थी। रासलीला के समय घटित हुई इस विशिष्ट घटना का वर्णन दशम स्कंद के 33वें अध्याय में हुआ है। कि गोपियों के जो है मुख में पसीने की बूंदे हैं तो भगवान पोछते हैं अपने हाथ से, ये वर्णन है। आगे अक्रूर जी क्या सोच रहे हैं? यद्यपि कंस ने मुझे यहाँ अपना दूत बनाकर भेजा है किंतु अच्युत भगवान मुझे अपना शत्रु नहीं मानेंगे। वास्तव में तो भगवान के साथ शत्रुता करने के ही लिए मैं जा रहा हूँ, भगवान के शत्रु के द्वारा भेजा गया हूँ और उनको ले भी जा रहा हूँ। क्या शत्रुता के लिए ही ले जा रहा हूँ? शत्रुता का ही व्यवहार वहां पर होना है। भगवान में उसको नहीं मानेंगे कि मैं शत्रु हूँ, जबकि सब शत्रुता की ही योजना शुरू से भी है और बाद में भी सब शत्रुता का ही कार्य हो रहा है। लेकिन भगवान मुझे शत्रु नहीं मानेंगे अपना। आखिर सर्वज्ञ प्रभु इस भौतिक शरीर रूपी क्षेत्र के वास्ते में ज्ञाता है। वे अपनी पूर्ण दृष्टि से हृदय के सारे प्रयासों को अंदर और बाहर से देखते हैं, तो भगवान मुझे ऐसा नहीं मानेंगे कि मैं उनका शत्रु हूँ। अंदर बाहर सब कुछ तो वही देखते हैं। नमयुपैश्यत्करी बुद्धिमच्युता कंसस्य दूता प्रहितोपि विश्वद्रीप योऽन्तर्बहिश्चे तत एतदीहितं क्षेत्रकै क्षत्यमलेन चक्षुषाम। तात्पर्य में लिखा है सर्वज्ञ होने से भगवान कृष्ण जानते हैं कि अक्रूर बाहर से कंस के मित्र हैं और भीतर से कृष्ण के नित्य भक्त हैं। इस तरह है, जब मैं हाथ जोड़कर उनके पैरों पर प्रणाम करने के लिए गिरकर पड़ा रहूंगा, जब मैं नहीं उठूंगा उनके चरणों में गिरा ही रहूंगा, उनके चरणों में गिरूंगा तो अपना हाथ भी मेरे सिर पर रखेंगे, फिर भी जब मैं उनके पैरों से नहीं उठूंगा मैं पड़ा ही रहूंगा तो क्या होगा? वे अपने हंसी युक्त स्नेह भाई चितवन से मुझे देखेंगे तो हंसेंगे, स्नेह से देखेंगे मुझे, तब मेरा सारा पाप छू मंतर हो जाएगा। इस प्रकार से विचार कर रहे हैं, तब मेरे सारे संशय दूर हो जाएंगे और मैं गहन आनंद प्राप्त करूंगा। अप्यंग्रि मूले वहितं कृतांजलिं मामीक्षिता सस्मिते मांद्रयां दृशां पद्य पद्भस्त समस्त किल्बिषौं वोढामुदम्बित विशङ्गोर्जितां। अब भगवान फिर क्या करेंगे? मुझे अपने घनिष्ठ मित्र और संबंधी के रूप में पहचानेंगे भगवान। कि मैं उनका घनिष्ठ मित्र हूं और संबंधी हूं, तो फिर क्या करेंगे? कृष्ण अपने भुजाओं से उठा करके अपने वक्षस्थल से आलिंगन करेंगे मेरा, मुझे हृदय से लगाएंगे, तब क्या होगा? उसी क्षण मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा और कर्मों से जन्म मेरा भौतिक बंधन शून्य हो जाएगा। सुहृत्तमं याति मनं नरेवतम दूरभ्याम बृहद्याम परिदर्शते माम आत्मा ही तीर्थी क्रियते तदेव मे बंधस्य कर्मात्मक उच्छवस्थित। अब कृष्ण द्वारा आलिंगन किए जाने के बाद मैं उनके समक्ष विनम्र भाव से सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा। कैसी कैसी योजना बना रहे हैं अक्रूर जी कि फिर क्या होगा, फिर क्या होगा है? जब कृष्ण मुझे अपने हृदय से आलिंगन करेंगे उसके बाद फिर मैं हाथ जोड़ के वहां उनके सामने खड़ा रहूंगा और वे मुझसे कहेंगे मेरे प्रिय अक्रूर, भगवान कहेंगे, उसी क्षण मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरा जीवन सफल हो जाएगा। निस्संदेह जिस व्यक्ति को भगवान मान्यता नहीं देते हा? उसका जीवन क्या है? निंदनीय है। अगर भगवान मान्यता नहीं देते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर वो जीवन बेकार है, उसका निंदनीय है। लब्ध्वांग संगम प्रणतम कृतांजलिम माम अक्षिते क्रूर तते तिरुश्रमा सदा वयम जन्म भृतो महीयसाम नैवादृतो यो दिग्मुष्ट जन्म तन। फिर अक्रूर जी क्या सोचते हैं कि भगवान का तो कोई ना तो प्रिय है ना अप्रिय है, ना ही उनका कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, ना तो किसी से राग करते हैं ना किसी से द्वेष करते हैं, परंतु साथ साथ अपने भक्तों से उनकी पूजा के अनुसार उसी तरह प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, जिस तरह पारिजात वृक्ष अपने पास आने वालों की छाएं पूरी करता है, कल्प वृक्ष। तो भगवान ने गीता में कहा ये था माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि, है ना? वैसे उनका कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, जो मुझे उनसे जैसा करता है आदान वैसा वो प्रदान करते हैं। न तस्य कश्चन दयिता सुरेतमो न चाप्रियो द्वेष्य उपेक्षे तथापि भक्तान भजते यथा तथा सुरद्रमोयन मधु मधुपाश्रितोर्थदहां। तात्पर्य लिखा है भगवान ने ऐसी बात भगवत गीता में 9:29 कही है, नवे अध्याय का 29वां श्लोक, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिया ये भजन्तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न मैं किसी का पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए एक समान हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और वह मुझ में रहता है, मैं भी उसका मित्र हूँ। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उन लोगों के लिए वज्र जैसे कठोर थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे, किंतु जो उनके दैवीय उद्देश्य को समझते थे उनके लिए वो कमल के समान कोमल थे। फिर अक्रूर जी क्या विचार कर रहे हैं कि जब भगवान बोलेंगे क्या ये तात, तात का मतलब प्रिय, तात शब्द ऐसा है संस्कृत में कि बड़ा छोटे को भी बोलता है, छोटा बड़े को भी बोलता है, पिता भी पुत्र को बोलता है तात और पुत्र भी पिता को बोलता है तात, और तात में जो है ना बहुत आत्मीयता होती है, बहुत घनिष्ठता होती है तात में, तो जब मुझे तात कहेंगे तो बस मेरा जीवन सफल हो गया। और उसके बाद क्या होगा? जब मैं अपना सिर झुकाए खड़ा रहूंगा उनके सामने, तब कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी मेरे जुड़े हुए हाथों को पकड़ लेंगे, जुड़े हुए हाथों को वो भी अपने हाथ जोड़ लेंगे मेरे हाथों के ऊपर, इस तरह से मेरे हाथों को वो दबा देंगे अपने दोनों हाथों से बलराम जी। फिर क्या होगा उसके बाद? क्या होगा उसके बाद? ये होगा कि फिर वे मेरा आलिंगन करके मुझे अपने घर ले जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर इस सभी प्रकार की अनुष्ठान सामग्री से मेरा सत्कार करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि कंस उनके परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। पूछेंगे, जानते हैं कि कंस बहुत दुष्ट है, हमारे परिवार के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, कितना गलत व्यवहार कर रहा है, और आप लोग कुशल पूर्वक हो कि नहीं हो। तो पूछेंगे, प्रश्न करेंगे, किम चाग्रजो भाम मा विनतम यदुत्तम स्मयन परिस्वृहित मंगलो गृह प्रवेशाप्त समस्त सत्कृतम संप्रेक्षित कंस कृतम सबुंदुसु। आप सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, मार्ग पर जाते हुए सफल के पुत्र अक्रूर, सफल उनके पिता का नाम है, सफल सफल के नंदन, कृष्ण के विषय में इस तरह गंभीरता पूर्वक ध्यान करते करते जब गोकुल पहुंचे तो सूर्य डूबने ही वाला था। देखा, दिन भर लग गया अक्रूर जी को चिंतन करते करते, उनको रास्ते का पता नहीं चला, इतना लंबा रास्ता नहीं था, लेकिन कृष्ण का चिंतन करते करते धीरे धीरे रथ जा रहा है और चिंतन कर रहे हैं कृष्ण का, तो सवेरे से शाम हो गई अक्रूर जी को। न तो उनको रास्ते का पता चला, न दिन का पता चला कि दिन कैसे बीता उनका। इति संचिंतयन् कृष्णम सफल के तनयो ध्वनि कथेन गोकुलम प्राप्ता सूर्यस्य गिरिम है। श्रीला श्रीधर स्वामी की टीका है कि कृष्ण के ध्यान में मग्न होने के कारण यद्यपि अक्रूर को मार्ग भी नहीं सूझ रहा था, फिर भी वे अपने रथ पर चढ़कर गोकुल पहुंच गए। अब जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। जो जो बातें सोची और जैसे जैसे सोची तो वो बातें वैसे वैसे ही हुई। तो क्या देखा, तेरा गाय में अक्रूर ने उन पैरों के चिन्ह देखे। वही कहा था कि मैं देखूंगा चिन्हों को, पैरों के चिन्हों को देखूंगा, तो वही पैरों के चिन्ह देखे। जिनकी धूल को समस्त ब्रह्मांडों के लोकपाल अपने मुकुटों में धारण करते हैं, भगवान के वे चरण चिन्ह जो पहचाने जाते हैं कैसे, कमल के द्वारा। कमल का चिन्ह है, यव है और अंकुश है, ऐसे चिन्ह है और पृथ्वी की शोभा बढ़ा रहे हैं। वो चिन्ह देखे अक्रूर जी ने, पदानि तस्याखिल लोकपाल किरीट जुष्टा मले पादरेणो ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानी विलक्षतान्यम जयवां कुशाद्य। अब क्या हुआ, भगवान के चरण चिन्हों को देखने से उत्पन्न आनंद से विह्वल हो गए अक्रूर जी। चरण चिन्ह देखे भगवान के, अभी भगवान को नहीं देखा है? अभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ, क्या देखा, जमीन में चरण चिन्ह देखे, जन्म की क्या चिन्ह है, कमल, अंकुश, यव और भी कई चिन्ह है, ये चिन्ह है। तो बेहवल हो गए आनंद से और शुद्ध प्रेम के कारण उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, रोमांच हो गया, आंखें आंसुओं से भर गईं, जैसे चरण चिन्ह देखे। अपने रथ से नीचे कूदे, तुरंत अपने रथ से नीचे कूदे, उन चरण चिन्हों पर ये चीख कर चीखते हुए लौटने लगे। ओह, ये तो मेरे प्रभु के पांवों की धूल है, इस प्रकार से रो रहे हैं और उन चरण चिन्हों पर लौट रहे हैं। तंदर्थ नाहला जय दिवृद्ध संभ्रमा प्रेमो दरो श्रुकला कुलेक्षण रथादवस्कंद सत्य स्वचेत प्रेम और मूर्धन्य जांच हो। अब सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, समस्त जीवधारियों का जीवन लक्ष्य यही आनंद है। अक्रूर जी को जो आनंद प्राप्त हुआ है, यही देहधारियों का असली जीवन का लक्ष्य है, ये आनंद प्राप्त करना, जिसे अक्रूर ने कंस का आदेश पाकर अनुभव किया है। उन्होंने अपना पूरा गर्व त्याग दिया, भय त्याग दिया और शोक त्याग दिया, इस आनंद का अनुभव किया। गर्व, भय और शोक त्याग दिया और अपने आप को भगवान कृष्ण को स्मरण दिलाने वाली वस्तुओं को देखने, सुनने और वर्णन करने में लीन कर दिया। देहं भृतामि मान्यर्थं हित्वा दम्भं वियं शुचं संदेशाद्यो हरेर्लिंग दर्शन श्रवणादिभिः। तात्पर्य में लिखा है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि अक्रूर ने कृष्ण के प्रति खुल्लम खुल्ला अपना प्रेम और सम्मान दिखलाते हुए सारा भय त्याग दिया। हाँ, तो कृष्ण के प्रति सम्मान नहीं दिखा सकते थे मथुरा में, कंस का भय था, अभी उनका भय दूर हो गया। भले ही वे या उनके परिवार के लोग कंस के द्वारा दंडित ना किए जाएं बाद में, कंस चाहे दंड क्यों ना दिए उनको कि तुमने कृष्ण से ऐसा प्रेम क्यों किया। अक्रूर ने अपना गर्व भी छोड़ा क्योंकि राज परिवार के सदस्य हैं, ये गर्व छोड़ा, धूल में लौट रहे हैं। राजा के परिवार का कोई आदमी रथ से उतर करके धूल में क्या लौट सकता है ना, तो गर्व भी छोड़ दिया, भय छोड़ दिया कंस का कि कंस तो बहुत गुस्सा होगा और दंड दे सकता है कि कृष्ण के चरणों का तुमने इतना सम्मान क्यों किया जिसके जिसका मैं दुश्मन हूं, उसका तुमने इतना सम्मान किया। तो वो भय भी दूर हो गया और गर्व भी दूर हो गया उनका कि राज परिवार का हूं मैं। और उन्होंने अपने घर, पत्नी और परिवार का शोक छोड़ दिया क्योंकि कंस के कारण उनका घर, पत्नी, परिवार सब संकट में थे। ये गर्व, शोक और भय तीनों को त्याग करके भगवान के चरण कमलों की धूल में लौटने लगे। अब क्या हुआ, अक्रूर ने देखा कि ब्रज ग्राम में कृष्ण और बलराम क्या कर रहे हैं, गवों को धोने के लिए जा रहे हैं। तो जब तक अक्रूर जी पहुंचे वहां तब तक कृष्ण और बलराम ने स्नान कर लिया था क्योंकि गाय की धूल से पूरे धूसर थे कृष्ण और बलराम, स्नान कर चुके हैं और अब गवों को धोने के लिए जा रहे हैं। तो अक्रूर जी ने देखा कृष्ण पीत वस्त्र धारण किए हैं और बलराम नील वस्त्र धारण किए हैं और दोनों की आंखें कैसी हैं, शरत कालीन कमलों के समान हैं और दोनों बलशाली भुजाओं वाले हैं, लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, एक का रंग गहरा नीला है और दूसरे का रंग श्वेत है। ये सुंदर मुख वाले दोनों ही समस्त व्यक्तियों में सर्वाधिक सुंदर हैं। जब ये दोनों युवक हाथियों की सी चाल से अपनी दया भरी मुस्कान से देखते हुए चलते हैं तो ये दोनों महापुरुष अपने पद चिन्हों से चरागाह को सुशोभित बनाते हैं। ये पद चिन्ह कैसे हैं, पताका, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्हों से युक्त हैं। ये अत्यंत उदार और आकर्षक लीलाओं वाले दोनों प्रभु मणि जटित हार पहने हुए हैं और फूल की मालाएं धारण किए हुए हैं। इनके अंग सुगंधित द्रव्यों से लेपित हैं, अभी अभी स्नान करके आए हैं और निर्मल वस्त्र धारण किए हैं। इन आदि महापुरुषों और ब्रह्मांड के आदि कारणों ने पृथ्वी के कल्याण हेतु अब केशव और बलराम के रूप में अवतार लिया है। ये दोनों स्वर्ण आभूषित पर्वतों की तरह लग रहे हैं जिनमें एक पर्वत मरकत मणि का है और दूसरा चांदी का पर्वत है। बलराम जी चांदी के पर्वत जैसे लग रहे हैं और कृष्ण मरकत मणि के पर्वत जैसे लग रहे हैं। और अपने तेज से सारी दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहे हैं। ददर्श कृष्णम रामम चाम बजे गो दोहनम गीतनीलाम वर धरम शरदम बोरोहे क्षण किशोर श्यामल श्वेतम श्रीनिकेत बृहन भुज सुमुख सुंदर वरम बल दुर्दय विक्रम ध्वज वज्रम कुसाम भोज चिन्हित रंग बिर्ज शोभयंत महात्मान सानुक्रोशं स्मिते क्षणं उदारे रुचरे क्रीडं त्रग्विणो वनमालिनो पुण्यगंधानुलिप्तांगं स्नातं विरजेवासतं प्रधान पुरुषावाद्यं जगन्हेतु जगत्पति अवतीर्णो जगत्यर्थे स्वां सेन बलकेशवं दिशो विकिमिराराजं कुर्वाणो प्रभया स्वयं यथा मारकदा शैलो रौप्यस्य कनकाचिता। अब स्नेह से विह्वल हो गई है, अक्रूर तुरंत अपने रथ से नीचे कूदकर बलराम और कृष्ण के चरणों में कैसे गिरे, डंडे के समान गिरे। जैसा सोचा था वैसे ही किया, डंडे के समान गिरे। तथा तूर्णम अवप्लुत्य सोक्रूरा स्नेह विमल पपात चरणो पांते दंडवंद्राम कृष्ण यो। भगवान के दर्शन की प्रसन्नता से अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए, अंगों में आनंद का उभार हुआया, उन्हें ऐसी उत्कंठा हुई कि हे राजन, हाँ वे अपने आप को वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सके। अपनी प्रसन्नता वो भगवान को बता नहीं पा रहे हैं, इतनी प्रसन्नता हो रही है भगवान का दर्शन करके। भगवान दर्शन हलादे बासपुरिया कुलेक्षण कुल कांचांग और कंठ्या स्वाख्या ने ना सकन। अब क्या हुआ, भगवान क्या करते हैं, अक्रूर को पहचान करके भगवान कृष्ण ने उन्हें रथ के चक्र से अंकित अपने हाथ से अपने निकट खींचा। भगवान के हाथ में चक्र का चिन्ह है, जो चक्र धारण करते हैं ना, तो चक्र से उनकी उंगली जो है ना चिकनी है, तो चक्र के चिन्ह से चिन्हित है उनका हाथ। तो अक्रूर को उन्होंने अपने हाथ से निकट खींचा और उनका आलिंगन किया, वैसे किया जैसा उन्होंने चाहा वैसे किया। और कृष्ण को प्रसन्नता हुई क्योंकि वे अपने शरणागत भक्तों के प्रति सदैव स्नेहिल रहते हैं, तो वैसे ही जैसा उन्होंने चाहा था वैसे ही कृष्ण को प्रसन्नता हो रही है कि मथुरा से हमारा एक संबंधी आया है। कृष्ण जना ऐसा सोच रहे हैं। भगवान तम अभिप्रेत के तथांगांकित पाणि न परिरेभेभ्युपाकृष्य प्रीता प्रणत है वत्सल। तात्पर्य लिखा है आचार्यों की टीका है कि भगवान कृष्ण ने चक्र से अंकित अपना हाथ बढ़ाकर ये इंगित किया है कि कंस को मारने की उनमें क्षमता है। भगवान के हाथ में चक्र का चिन्ह है। जब अक्रूर अपना सिर झुकाए खड़े हुए थे है ना, तो जैसा चाहा था वैसे ही हुआ ना। अभी अक्रूर जी खड़े हैं अपना सिर झुका करके, तो भगवान संकर्षण क्या करते हैं, वैसे ही करते हैं, उनके दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर से दोनों हाथों को दबा देते हैं बलराम जी है? उनके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए, तब वे कृष्ण सहित उन्हें अपने घर ले गए। अक्रूर से ये पूछने के बाद कि उनकी यात्रा ठीक रही है? इस प्रकार से पूछा और बलराम ने उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया, शास्त्रोचित विधि से उनके पांव पखारे, आदर पूर्वक मधु मिश्रित दूध दिया, अतिथि का सत्कार जैसे होता है उस प्रकार से किया। संकर्षण से प्रणतम उपगुही है महात्मन गृहीत्वा पाणि ना पाणि अनयंतानुजो गृहम कृष्ट्वा च स्वागतम तस्मै निवेद्य चावरासनम प्रक्षाल्य विधिवत पादौ मधुपरकारहणा महरन। अब इसके बाद क्या किया भगवान ने, बलराम जी ने क्या किया, अक्रूर को एक गाय दान दी, अतिथि को जो है ना जैसे करते हैं एक गोदान की, उनकी थकान दूर करने के लिए उनके पैर दबाए बलराम जी ने, तब परम आदर और श्रद्धा के साथ भांति भांति की उत्तम स्वादों से युक्त उचित विधि से पकाया हुआ भोजन खिलाया अक्रूर जी को। निवेद गाम चादित समवाय श्रांत मांदृत अन्नम बहुगुणम मेध्यम श्रद्धयोपाहरंदिभूम। तात्पर्य में लिखा है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार अक्रूर कृष्ण तथा बलराम के घर द्वादशी के दिन गए और उस दिन रात में उपवास नहीं तोड़ना चाहिए, किंतु अक्रूर ने इस शिष्टाचार को छोड़ दिया क्योंकि वे भगवान के घर का भोजन पाने के लिए उत्सुक थे। फिर जब अक्रूर भर पेट खा चुके तो धार्मिक कर्तव्यों के परम ज्ञाता भगवान बलराम ने उन्हें मुख को मीठा करने वाले सुगंधित द्रव्य दिए भोजन के बाद और साथ ही सुगंधित फूल मालाएं पहनाई। इस प्रकार अक्रूर ने एक बार फिर परम आनंद प्राप्त कर लिया। तस्मै भुक्तवते प्रीत्या रामा परम धर्म भी मुख्य बात गंध माल्य पराम प्रीत पुनः। नंद महाराज ने अक्रूर जी से पूछा। अब नंद महाराज अक्रूर जी से क्या पूछते हैं, हे दशारह वंशज, दशारह के वंश में पैदा हुए, हे दशारह वंशज, उस निर्दयी कंस के जीवित होते हुए आप सभी किस तरह अपना पालन करते हैं? आप तो कसाई के संरक्षण में भेड़ जाते हैं। ठीक ही है, नंद जी जो कह रहे हैं कि आपका कंस पालन कर रहा है, रक्षा कर रहा है आपकी, कैसे? जैसे कसाई भेड़ों की रक्षा करता है, किस लिए? एक दिन मार के खा जाएगा, एक भेड़ को खिलाता पिलाता है और भेड़ की रक्षा भी करता है ना। इसी प्रकार कंस आप लोगों की रक्षा कर रहा है ना। बहुत सही उपमा दी है नंद जी ने। पप्रच्छ सत्कृतम नंदा कथम निरनुग्रहे कंसे जीव की दासार है सौन पालाम वा वयहां। उस क्रूर स्वार्थी कंस ने अपनी बिलखती हुई दुखित बहन की उपस्थिति में ही उसके बच्चों को मार डाला। इससे ज्यादा क्रूर और कौन हो सकता है? अपनी ही बहन के बच्चे को अपनी बहन के सामने ही वो मार रहा है, खत्म कर रहा है, इससे बढ़कर के और कौन क्रूर हो सकता है? कंस है ना। तो आपके साथ अगर अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वो क्या है? हाँ, तो फिर हम आपसे कुशलता के विषय में क्या पूछें कि आप कैसे कुशल हैं? हम क्या पूछें आप? आपकी कैसे कुशल हो सकती है उस कंस के रहते हुए? जब तक कंस जिंदा है तब तक आप कैसे कुशल से रहेंगे? कैसे आप सुरक्षित रहेंगे? अगर सुरक्षा है तो वैसी सुरक्षा समझ लो कि भेड़ सुरक्षित है कसाई के द्वारा, तो वो सुरक्षा थोड़ी मानी जाएगी। बहुत संकट है ना, तो आप लोगों के ऊपर तो हमेशा प्राणों का संकट रहता है। और कंस की नीति भी ऐसे ही है कि जिसको चाहे मरवाना, उसको कुछ नहीं पता चलता। कंस जिसको मरवाना चाहता है उसे कुछ पता नहीं चलता, उसका कुबलिया पीठ हाथी है ना। उसको सिखाया जाता है और रास्ते में मिले जा रहे हैं कहीं अपने घर से बाहर निकले और वो मार देगा। राजा का हाथी है, कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई कानून नहीं चलता, कोई मुकदमा नहीं चलता, कोई कोर्ट केस नहीं चलता। कंस का जो है ना इस प्रकार से पूरा जो ना शासन चलता है, उसका अपना कानून है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। या कंस के जो है चारों मुस्तक पहलवान है, वो बुलाएंगे, चलो राजा की आज्ञा है आपको जो है कुश्ती लड़ना, और कुश्ती लड़नी पड़ेगा आपको, और कुश्ती में उनको जो है ना पटकना है और आपको मार डालना है, वो मार डालेंगे आपको। और राजा की आज्ञा से ये हुआ है, कोई सुनवाई नहीं। यही था, और यही हाल कृष्ण बलराम के साथ किया। राजा की आज्ञा है, चलो कुश्ती लड़ो। कृष्ण बलराम ने कहा नहीं, हम लोग तो अपने समान बच्चों से लड़ेंगे। ठीक है, राजा की आज्ञा है तो हमारे साथ में जो है बच्चे हैं, साथी हैं, हम उनसे लड़ करके राजा का मनोरंजन कर देते हैं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, राजा की आज्ञा है, हमसे लड़ना पड़ेगा आपको। और उसके लिए फिर एक और उनको कारण मिल गया कि नहीं नहीं आप बच्चे थोड़ी हो, बच्चे थोड़ी हो, इतना बड़ा कुबलिया पीड़ हाजी कैसे मारा आपने। तो फिर कृष्ण बलराम को लड़ना ही पड़ा पर लड़ना था ही उनको लेकिन जैसे कपटी वो थे तो वैसे कृष्ण बलराम भी कपटी, जैसे वो कपटी थे तो कृष्ण बलराम कहते हम लोग लड़ने के लायक थोड़े, हम लोग तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो कपटी को जो है ना, कपटी के लिए भगवान महाकपटी हैं, है ना। तो उसी प्रकार से कुबलयापीठ हाथी है ना कपटी, कपटी के साथ उन्होंने भी कपट किया। जैसे मारते थे वैसे उन्होंने मारा उन सबको, जैसे कंस की कपट नीति थी उसी प्रकार की कपट नीति के साथ भगवान ने सबको मारा एक एक के साथ, उसी प्रकार का जो ना व्यवहार किया भगवान ने। योवधीन स्वस्तस्वकान क्रोशं त्यासुत्रेखना प्रजानां वा कुशलं बिम्बिसामहे। फिर इस प्रकार के सत्य और मधुर वचनों से नंद महाराज ने अक्रूर का सम्मान किया। पूछताछ ये है, सत्य और मधुर वचन यही है। इसमें कोई कहे कि नहीं कंस की निंदा क्यों कर रहे हैं, नहीं ये सत्य और मधुर वचन यही है नंद महाराज जो कह रहे हैं है? ये नहीं कि निंदा नहीं करनी चाहिए, जो निंदनीय है उसकी निंदा करना भी सत्य और मधुर कहलाता है। ये सत्य और मधुर वचन है। नंद जी ने कहा कंस की निंदा की कि कितना क्रूर है, तो अक्रूर जी का सम्मान किया उन्होंने सत्य वचनों से और मधुर वचनों से सम्मान किया, और इस प्रकार से अक्रूर की थकान दूर कर दी अपने वचनों के द्वारा भी। अतिथि का कैसे सम्मान करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं कोई अतिथि अगर आता है अगर आप और कुछ नहीं दे सकते तो मधुर वचनों के द्वारा भी सम्मान कर दो तो भी उसका जो ना काफी कष्ट दूर हो जाता है। मधुर वचनों से भी तो कम से कम सम्मान करो, है कि नहीं है? क्या है क्यों आए क्या चाहिए ऐसे नहीं है ना। तो भक्त लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा बोलते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने जो है ना ये विधि सिखाई अपने शिष्यों को। एक ऐसा भी स्थान था जहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली दान मिली थी, कौन सा स्थान था, $3,000,000 की जो ना हवेली है ना, वहां पर वो एरिया बहुत ही गुंडे बदमाशों का था। तो प्रभुपाद के शिष्य बोले कि प्रभुपाद ये तो बहुत यहाँ गुंडे बदमाश हैं, यहाँ पर यहाँ तो कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। प्रभुपाद कहते हैं कि नहीं नहीं कोई चिंता नहीं, जो भी आए उसको मधुर वचनों से उसका स्वागत करो, उस प्रसाद दो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, है ना, कोई चिंता नहीं। बल्कि कई भक्तों के सामने एक बदमाश था, प्रभुपाद के प्रवचन के बीच में जो है ना वो खड़ा हो गया और उसकी आंखें में जो है ना मतलब हिंसा की भावना थी, बड़े गुस्से से खड़ा हुआ, और प्रभुपाद जी बड़े शालीनता के साथ उसके सामने थाली पेश करते हैं। उस थाली में कटा हुआ सेब था और चाकू भी था, चाकू नंगा चाकू रखा था थाली में और कटा हुआ सेब भी था, और प्रभुपाद ने उसके सामने ऐसे बढ़ाई थाली, तो शिष्य लोग घबरा रहे थे कि शायद वो चाकू उठा लेगा और चाकू से प्रभुपाद पर प्रहार कर सकता है, लेकिन उसका गुस्सा दूर हो गया, उसने सेब का टुकड़ा उठाया और सेब खा लिया और चला गया तो अतिथि का जो ना सम्मान करने की कला प्रभुपाद से सीखना चाहिए, प्रभुपाद करते हैं है? तो यहाँ पर भी देखो कृष्ण बलराम कैसे सम्मान करते हैं अतिथि का, अतिथि की सेवा कैसे करते हैं। और नंद महाराज ने सम्मान किया मधुर और सत्य वचनों के द्वारा। अक्रूर जी थकान बोल गई, इत्थं सुनृतया वाचा नंदेन सुसभाजिता अक्रूरा परिपृष्टेन जहावद्व परिश्रमम्। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के अंतर्गत वृंदावन में अक्रूर का आगमन शीर्षक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार से ये 43 श्लोक हैं इस अध्याय में, और हमने सुना अक्रूर जी कैसे वृंदावन आए। फिर इनका प्रश्न है कि अतिथि का जैसे सम्मान होना चाहिए, तो मंदिर में बहुत से जो लोग आते हैं दर्शनार्थी, तो वो क्या अतिथि के समान है और भक्तों का क्या कर्तव्य है किसी प्रकार से उनका आदर सम्मान करें? नहीं, यहाँ पर अतिथि का मतलब आप समझिए, अतिथि का मतलब क्या है? आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हर कोई अतिथि है। नहीं, अगर जो आतंकवादी अगर आए और वो अगर गलत या कोई चोर डाकू आए, तो आप नहीं कह सकते कि वो अतिथि है। हर व्यक्ति को आप अतिथि नहीं कह सकते हैं। अतिथि का मतलब ये है कि रास्ते के परिश्रम से थका हुआ है कोई व्यक्ति, है ना, और वो आता है, उसकी कुछ आवश्यकता है। अतिथि का मतलब है कोई तिथि नहीं उसकी, वो भी नहीं जानता है कि वो आपके घर में कब आएगा, और ना आप जानते हैं कि कौन व्यक्ति आपके घर में किस समय आने वाला है। अतिथि का मतलब यही है, अचानक कोई आवश्यकता पड़ गई। यदि कोई व्यक्ति जो ना अपनी तारीख निश्चित करके आया है कि मुझे वहां जाना है और मुझे ये करना है, या गलत काम करना है या सही काम करना है, तो वो अतिथि नहीं कहलाता है, है ना। तो जो लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, तो उनको उस प्रकार का अतिथि नहीं माना जा सकता है। वो आए हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन करके जाएंगे। लेकिन हाँ, किसी व्यक्ति की कोई जिज्ञासा होती है, सच्ची जिज्ञासा है, तो वो जिज्ञासु है, है? उससे कुछ जो है ना चिंता, कोई शंका, संदेह है, परेशान है, है ना, वो कुछ जानना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, उसके दिमाग में वो तनाव भरा हुआ है, है ना, और सचमुच वो जानना चाहता है, कुछ किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है, है ना, तो आप उसके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, है ना। हाँ, प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रसाद जरूर मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आता है, है ना, तो प्रभुपाद के पास कोई व्यक्ति आते थे तो उनको प्रसाद जरूर प्रभुपाद जी दिलाते थे, फिर उनको प्रसाद जरूर दो, है ना, तो भगवान का प्रसाद और फूड फॉर लाइफ की तरफ से भी प्रसाद वितरण की योजना बनाई गई है, तो कोई भी व्यक्ति हो उसको प्रसाद मिलना चाहिए। तो प्रभुपाद की ये भी योजना थी कि कोई भी इस्कॉन का मंदिर हो, उसके 10 मील तक के घेरे में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, प्रभुपाद जी की ये भी योजना थी, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद ने योजनाएं बनाई हैं, लेकिन फिर भी प्राचीन काल में जो है ना अतिथि ऐसे होते थे, क्योंकि रास्ते में ना तो पानी की व्यवस्था होती थी, है? और ना भोजन की व्यवस्था थी, ना होटल खुले थे। लेकिन कोई व्यक्ति जो है ना कहीं से जा रहा है, और कोई भी अगर घर दिखाई पड़ा, तो वो जो है ना कुछ आशा करता है कि यहाँ मुझे कुछ भोजन मिल सकता है, कुछ पानी मिल सकता है, कुछ विश्राम मिल सकता है, है ना, नहीं तो कहीं विश्राम करने की जगह नहीं। तो अभी तो काफी मामलों में स्थितियां बदल गई हैं। कोई व्यक्ति 10 दिन की यात्रा करता है तो 10 दिन का अपना सब व्यवस्था कर लेता है खाने पीने का, या फिर जगह जगह दुकानें खुली हैं, होटल खुले हैं, तो उनको कोई चिंता नहीं होती, वो अपना व्यवस्था कर लेते हैं। पीने का भी पानी अपने पास रखते हैं, या पीने का पानी खरीद लेते हैं और कई जगह मिल जाता है, है ना। तो इस तरह की भी व्यवस्था है। प्राचीन काल में अतिथि का बहुत सम्मान होता था और बहुत महत्व दिया जाता था, शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि उस समय जो ना जो गृहस्थ लोग होते थे, तो उनकी बड़ी भारी जिम्मेदारी होती थी। कोई होटल नहीं, होटलों की कोई आवश्यकता नहीं, हर गृहस्थ जो है ना अगर अपनी जिम्मेदारी समझे तो। और इसी कारण से सीता जी ने अतिथि का सत्कार किया था रामा। तो कुछ गलत लोग हैं जो गलत फायदा भी उठाते हैं इन चीजों का, लेकिन एक धर्म होता है गृहस्थ का कि वो घर में आए अतिथि का जो है सम्मान करे। अगर शत्रु भी है तो भी उसको उस समय शत्रुता का अनुभव ना हो, उसको जो है कुछ ऐसा ना महसूस हो कि आप शत्रु हैं उसके। अगर वो कुछ आशा करता है आपसे कुछ सहायता की अतिथि के रूप में आए, तो अगर वो शत्रुता की भावना से नहीं आया, अगर शत्रु भी है और शत्रुता की भावना से नहीं आया है, उससे कुछ आवश्यकता है, कुछ कष्ट है, तो उस समय आप अतिथि के रूप में उसका आप सम्मान करो और कोई मतलब तनाव ना पैदा होने दो। तो ये जो है ना बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ी तपस्या है। इनका प्रश्न है कि श्लोक संख्या 37-38 में ये लिखा है कि बलराम जी ने उनके हाथ पकड़े अक्रूर जी के और अपने घर ले गए। तो क्या बलराम जी का घर अलग से था? नहीं, बलराम जी का घर अलग से नहीं था, लेकिन बलराम जी बड़े भाई होने के कारण उनका कर्तव्य है कि वो शिष्टाचार को जाने और शिष्टाचार का पालन करें। और कृष्ण जो छोटे हैं उनको शिष्टाचार से कोई मतलब नहीं, छोटा हमेशा छोटा रहता है। तो बलराम जी जो है अतिथि सत्कार की जो विधि है उसका पालन कर रहे हैं बलराम जी। इसलिए बलराम जी अक्रूर जी को लाए और उनको आसन दिया, उनको भोजन कराया, उनको सब कुछ किया। तो ये जो है ना एक विधि है। तो भगवान जो है स्वयं इस प्रकार दिखाते हैं कि जो बड़ा भाई है उसको कुछ और भी सोचना होता है, छोटे भाई से ज्यादा सोचना पड़ता है बड़े भाई को कि क्या करना चाहिए। इनका प्रश्न है कि अक्रूर जी ने ऐसा वर्णन किया है कि भगवान ऐसे सुंदर होंगे, ऐसे होंगे, तो उन्होंने तो भगवान को देखा नहीं था। भगवान को देखा था कैसे? शास्त्रों के द्वारा, साधुओं के द्वारा। तो शास्त्रों में बहुत वर्णन है भगवान के रूप का और साधु संतों ने बहुत वर्णन किया और सुना उन्होंने अक्रूर जी ने। रुक्मिणी ने भी कभी देखा नहीं भगवान को, लेकिन श्रवण से जो है ज्यादा देखा जाता है भगवान को। इन आंखों से आप भगवान को नहीं देख सकते हैं वैसा जैसा कि आप कानों के द्वारा देखते हैं, है कि नहीं? तो कानों के द्वारा जो ना अक्रूर जी ने श्रवण किया है भगवान के बारे में, शास्त्रों से श्रवण किया है। आपका प्रश्न, इनका प्रश्न है कि अक्रूर जी ने जैसे जैसा सोचा कि मैं उनको प्रणाम करूंगा तो फिर वो मुंडेरे सिर पर अपने कर कमल रखेंगे और फिर हाथ से उठा करके आलिंगन करेंगे। तो चूंकि भगवान हृदय में निवास कर रहे हैं, सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान ने वो बातें उसी प्रकार से पूरी की। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो भगवान विशेष रूप से अपने भक्ति की भक्ति वांछा कल्पतरु कहा जाता है, प्रपन्न पारिजात है कृष्ण को कहा जाता है, प्रपन्न पारिजात। प्रपन्न का मतलब जो शरणागत है उसकी इच्छाओं को भगवान पूरी करते हैं। वैसे तो जितने जीव हैं सबकी इच्छाओं को भगवान पूरा करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुरंत ही पूरी करें, वो तुरंत पूरी करें या 100 जन्मों के बाद पूरी करें, ये भगवान के हाथ में है। तो भगवान जो है ना किसी के नौकर नहीं है, प्रत्येक जीव की इच्छा जरूर पूरी करेंगे, लेकिन जैसे मालिक होता है नौकर को कहता है कि धैर्य धारण करो, अभी नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, धैर्य धारण करो, रुको। तो 100 जन्मों के बाद या 1000 जन्मों के बाद इच्छा पूरी करेंगे भगवान। लेकिन भगवान जो है किसी के नौकर नहीं है, जो कि मतलब जो जीव जो इच्छा करे तुरंत पूरी करें। भगवान को भक्तों का सेवक समझ लो या भक्तों पर उनकी विशेष दया समझो, लेकिन भगवान भक्तों की इच्छा तुरंत पूरी करते हैं। प्रभुपाद की इच्छा थी कि यहाँ मंदिर बने, जबकि ये स्थान बहुत उबड़ खाबड़ था, परंतु यहाँ पर मंदिर बना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।